الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت 159 ہم نے شروع کر لی تھی لیکن تھوڑا مکمل نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اس وجہ سے کہ اللہ کی رحمت ہے تو آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اور اگر آپ سخت گیر ہوتے درست رویے والے ہوتے سخت دل والے ہوتے تو یہ آپ کے ہاں سے ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں اب یہاں سے ہم آگے آج فَاعْفُ عَنْهُمْ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کی ان حرکتوں کے باوجود ان سے درگزر کیجیے یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ بات مقدر ہے کہ جو کچھ ہوا وہ قابل سزا تھا کہ میدان جنگ میں آدمی بھاگ جائے یا اپنے کمانڈر کی بات کو نہ مانے تو یہ ایک قابل سزا چیز ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتے ہیں کچھ جیسا میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سارے لوگ منافق نہیں تھے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ایسا ہوا تھا بلکہ جب ہڑبوم بچی تو وہ ایک سب ایک ہی کیفیت کا شکار ہو گئے تو اس لیے اس طرح کا گناہ نہیں تھا کوئی تو اس لیے فرمایا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے استغفار کیجیے یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ صرف اتنی بات بھی کافی تھی کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ ان کو آپ معاف کر دیجئے لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لیے استغفار بھی کیجیے تو اس میں دو باتیں جو سمجھ لیجئے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں گویا کسی دوسرے کا استغفار کرنا خاص طور سے نبی کا استغفار کرنا دوسروں کے کام آ سکتا ہے تو یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے مغفرت مانگیں تو اس کے کام آ سکتا ہے ورنہ حکم دینے کی وجہ نہیں ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ کو یہ کوئی دعا کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے رویہ آپ کا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے نبی کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے خدا سے ہاں سزا مانگے یا خود ان کو سزا اس طرح کی دینا چاہے بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کرے تو جو پہلا معنی میں نے بتائے ہیں اس میں شفاعت کا ایک تصور سا ابھر کے آ جاتا ہے کہ انبیاء کا یہ مقام ہے کہ وہ کسی کے لیے استغفار کر سکیں اور وہ شاید مانا جائے اور دوسری بات اس میں سے جھلک رہی ہے ہمارے ہاں عام طور سے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا تو اصل میں جب آدمی خود کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل دوسروں کو اپنی دعا میں شریک کر رہا ہوتا ہے یہ ایک الگ کنسیپٹ ہے اور یہ ایک الگ کنسیپٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے تو فَاعْفُ عَنْهُمْ آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اب ان کے لیے استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس جو غلطی ہوئی خطا ہوئی اس سے درگزر فرمائیں اور آئندہ کے لیے اچھی توفیق دیں تو اب یہ میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے رویے کی تلقین ہے نہ کہ دعا کی تلقین ہے اصل میں وہ اگلی بات سے واضح ہوتا ہے مزید وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ان کو اپنے ان معاملات میں شریک مشورہ رکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہمارا فیصلہ نہیں سنا آپ نے خود فیصلہ کر لیا اس کے باوجود آپ ان کی بات سنا کریں مشورہ لیا کریں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ منافق ہیں تو ان سے مشورہ نہ لیا جائے گا نہیں یہ کوئی بات نہیں منافق ہوں کمزور لوگ ہوں ہر صورت میں مشورہ لیا جائے گا تو اس صورت میں بھی کہ یہ آپ کے دشمن نظر آ گئے ہیں آپ کے ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, हमारी बात मानी नहीं गई, इसके बावजूद आप इनसे मशवरा लेते रहिए। अब ये इज्तमाही जो असूल होते हैं उनकी तरफ अल्लाह ताला का इशारा है कि मशवरे को कायम रखना चाहिए, खा हालात कुछ भी हों, मशवरा नहीं छोड़ना चाहिए। सफ़ों में ऐसे लोग भी मौजूद हो सकते हैं जो गलत मशवरा देने वाले हों, आपको रास्ते से हटाने वाले हों, मशवरा आपको सुनना है। हो सकता है कि उनकी शरारत में भी हमारे लिए फ़ायदा हो, उनके बुरे मशवरों में भी हमारे लिए कुछ रोशनी का सामान हो। कम से कम यही पता चल जाता है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इसलिए मशवरा जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुसलमानों की जो असाफ़ अल्लाह ताला ने इज्तमाई बताए हैं उनमें मशवरे को उनका वस्फ़ के तौर पर बयान किया है। जहाँ दो लोग रहते होंगे वो मशवरा करेंगे, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे कि अगर तुम सफ़र पर जाओ और तुम में से दो लोग हो तो अपने में से एक को अमीर बना लो, कि हम एक दूसरे से मशवरा करेंगे, एक की फैसला करने वाला होगा, एक मशवरा देने वाला होगा, तो यूं मिल मिलाकर हम बात चलाते रहेंगे। तो मुसलमान ये काम कर ही नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने जब घर बनाया है तो घर में भी एक आदमी को कवाम बना दिया है, बाकियों को उसके मुशीर बना दिया, घर में भी ऐसा ही किया। तो वो आदमी नहायत बदबख्त होगा कि जिसको अल्लाह ने घर का कवाम बनाया और वो अपने बीवी बच्चों से मशवरा नहीं करता, तो उसको मशवरे से सारे काम करने चाहिए। इसी से जो मातहत लोग होते हैं उनको एक अपने बात कहने का मौका मिलता है, उनके ग्रजेस जो हैं, उनके जो शिकायतें हैं वो ज़ाहिल होती हैं, तो अगर हम मशवरा ना सुने तो फिर काम ख़राब रहता है। तो यहाँ सूरत हाल यह है कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो उहद के वाक़े को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमत बनाकर पेश कर रहे हैं, वो भी उनसे भी कहा जा रहा है कि मशवरा आप जारी रखेंगे। फैज़ा अजमता फतवक्कल अल्लाह, अलबत्ता जब आप फैसला कर लें तो फिर अल्लाह पे भरोसा करें। ये बहुत खूबसूरत जुमला है कि मिसाल के तौर पर मशवरा लिया गया, मशवरा लेने में जाहिर है कि सारे लोग तो दुश्मन नहीं हैं, कोई अच्छे लोग होंगे, कोई साथी होंगे, कोई समझदार होंगे, कोई मेरे जैसे होंगे, वो सारे मिल मिलाकर मशवरा देंगे तो एक राय सामने आ जाएगी, बहुत सारे रास्ते सामने आ जाएंगे, बहुत सारे इम्कानात खुल के सामने आ जाएंगे, तो फिर आपने फैसला करना है। ये अल्लाह के रसूल के साथ मामला है, इसलिए अजमता का लफ्ज़ बोला है कि फिर जब आप फैसला कर लें तो फिर अल्लाह पे भरोसा करें। इसमें दो तीन बशारतें हैं दरअसल। एक ये कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने मशवरा किया और किसी मुनाफिक की बात पर फैसला हो गया है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पे भरोसा करें और अमल कर दें उसके ऊपर। इसमें अल्लाह की तरफ से बशारत है कि वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह साथ देंगे। दूसरा यह है कि जो पीछे बात चली आ रही थी कि हमारा तो इसमें कोई इख्तियार ही नहीं, कि हमारी बात नहीं सुनेगी, फरमाया इससे भी नहीं घबराओ, जब मशवरा करके फैसला किया तो बस ठीक है, तुमने एक राय अपना ली, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। अब जाहिर है कि मशवरा करते हुए सबकी तो नहीं बात मानी जा सकती, तीन राय हैं तो तीन में से एक ही मानी जाएगी, दो हैं तो दो में से एक ही मानी जाएगी, तो बस इन लोगों की परवाह नहीं करनी जो बातें बाद में करते हैं। मशवरे के वक्त मशवरा दिया गया, आपने राय ली, जिस पर फैसला हो गया सो हो गया, बस ख़त्म हो गई बात। अब जाहिर है कि ये राय किस बुनियाद पर बनती है, मजलिस में बाज़ूकात सब इत्तफाक कर रहे होते हैं, बाज़ूकात अक्सरियत होती है, बाज़ूकात एक बात अपने दलाइल की वजह से चल जाती है और वो मान ली जाती है। तो ये सारे तरीके जायज़ हैं, इसमें किसी का हक नहीं मारा जाता, बल्कि सबके मशवरे से बात जब बात चलती है तो वो उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी मेरी बात नहीं मानेगी, उसकी मान ली गई। वो तब होता है कि सब की बात सुनी लेकिन मशवरा नहीं किया, सुनने के बाद खुद एक आदमी ने फैसला कर लिया, इस तरह की चीज़ पर तो आप तबसरा कर सकते हैं। लेकिन आगे फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला अपने ऊपर भरोसा करने वालों को पसंद करता है। अब भरोसा क्या है? भरोसा दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक्य में इसको बयान किया है, किसी सहाबी ने आकर अपना ऊँट नहीं बांधा और मस्जिद में आ गए, तो आपने देखा तो आपने फरमाया कि ऊँट को बांधा नहीं, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, پہلے باندھو پھر توکل کرو. یہ توکل کی ایک بنیادی, چونکہ یہ دنیا اسباب کے تحت بنی ہے, اسباب کے تحت بنی ہے تو اس دنیا میں جب جو چیزیں اسباب کے تحت ہونی ہیں وہ اسباب کے تحت ہی ہونی ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کو پورا کرنے کے بعد مدد کے لیے آتے ہیں. آپ نے تیاری پوری نہیں کی وہ آپ کو ناکام کر دے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے تیاری پوری نہیں کی اور وہ اپنی طرف سے خاص عنایت کر کے آپ کو کامیاب قرار دے دے, یہ نہیں ہوگا. آپ نے غلط میدان چن لیا ہے تب, آپ نے غلطی کر لی ہے تب, اس کے نتائج لازمن نکلیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے اونٹ کو رسی نہیں باندھی اور وہ جہاں چاہے چلا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو روکیں گے نہیں جانے سے. تو آپ کو رسی باندھنی ہے تاکہ اونٹ خود کہیں نہ چلا جائے. ہاں چوری جو ہونی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اونٹ خود بھی تو ایک چلنے والی چیز ہے, وہ اپنی مرضی سے جدھر چاہے چلا جائے گا. ایک حد تک صاحب ارادہ مخلوق ہے تو وہ اپنے ارادے پورے کرنے کو نکل سکتا ہے. تو اس لیے جو بھروسہ کرنا ہے وہ اپنا عمل کرنے کے بعد کرنا ہے. اور جب آپ نے اپنی ساری چیزیں ٹھیک کر لیں, جو آپ محنت کر سکتے تھے کر لی, آپ مشورہ کر سکتے تھے وہ کر لیا, آپ جتنی احتیاطیں برت سکتے تھے, غلطی کے امکانات جتنے رد کر سکتے تھے وہ آپ نے سارے کر لیے, اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ کیجیے اور عمل کر دیجیے. اب اگر غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس اجتماعیت کو فائدہ پہنچائے گا. تو جو مشورہ ہے اس کی افادیت اپنی جگہ ہے اور توکل کی افادیت اپنی جگہ ہے. مشورے کی افادیت یہ ہے کہ بہت سارے پہلو کھل جاتے ہیں, ایک مسئلے کو ایک سے زیادہ ذہن مل کر سوچ رہے ہوتے ہیں, مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ پہلو سامنے آ جاتے ہیں, بہت ساری غلطیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن توکل کا مطلب یہ ہے کہ اب دوسروں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جب آپ نے فیصلہ صحیح طریقے سے کر لیا ہے مشورہ کر کے, تو اب گھبرانے کی بات نہیں ہوتی, بس اقدام کر دینا چاہیے. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلبہ لازم ہے, لیکن غلبے کے لیے یہ رکاوٹیں ساتھ وہ مختلف ہو سکتی ہیں, وہ مسلمانوں کا حوصلہ بھی شکست کرتی ہیں, وہ صحابہ کو بھی پریشان کرتی تھیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دیتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو احد کے واقعے میں ہوا, وہ ساری چیزیں صحابہ کے لیے بھی تکلیف کا باعث تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مداخلت کرنی پڑی معاملات کو درست کرنے کے لیے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غالب رہنا ہے انہوں نے, تو لیکن غالب رہنے کے لیے یہ سارا کچھ ہونا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان ینصرکم ان یرسکم اللہ فلا غالب علیکم, اگر اللہ نے تمہارا ساتھ دیا تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. وائیں یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تو بتاؤ کہ اللہ کے بعد پھر تمہارا کون مددگار ہوگا. تو یہ اصول بتایا کہ خاص طور سے رسول کے زمانے میں یہ اصول اپنی پوری قوت کے ساتھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. عام حالات میں ایسا نظر نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اس صورت میں بھی کہ کس کو ساتھ دینا ہے کس کو نہیں. وہ بعض اوقات کافروں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے, بعض اوقات مومنین کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے وہ اصول ہیں جو اخلاقی اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں. اگر کسی کافر کا اقدام اخلاقی طور پر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا, اور اگر کسی مومن کا اقدام حق کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دے گا. البتہ کچھ دوسری اسکیمیں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, کہ بعض کا جیسا ہم سورہ بنی اسرائیل میں پہنچیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں بعض لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان لوگوں کو اٹھا لاتا ہوں. وہ آتے ہیں سزا نافذ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا, بنی اسرائیل کہنا چاہیے, بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ اس سزا کو نافذ کیا قرآن مجید کے نزول سے پہلے. تو اس کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اپنے طاقتور بندوں کو اٹھا دیتا ہوں اور وہ پھر اپنے آ کر جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ قوم کو مار مور کے چلے جاتے ہیں. سزاؤں کا قانون ہوگا, رسولوں کے لیے غلبے کا قانون ہوگا, قوموں کے لیے اخلاقی اصول ہوگا, یہ سارے اصول چلتے رہتے ہیں. تو بعض کا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا का साथ क्यों दे रहे हैं, तो वो हो सकता है किसी कौम के लिए उभारने के लिए, झंझोड़ने के लिए खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा सज़ा आ गई हो, या झंझोड़ने के लिए कोई चीज़ आ गई हो। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो अल्लाह ताला ही जब गालिब करना चाहेंगे तो फिर कोई गालिब आता है, जब अल्लाह ताला साथ छोड़ देते हैं तो कोई साथ देने वाला नहीं होता। अब मैंने अर्ज़ कर दिया कि साथ देने के कई पहलू हैं, उन सब का लिहाज करते हुए अल्लाह ताला, ऐसा कभी नहीं होता कि कौमें इस वजह से अरूजो जवाल पाएँ कि उनके पीछे कोई अखलाकी चीज़ मौजूद ना हो। वो अखलाकी बहाना भी हो सकता है, झूठा अखलाकी बहाना, तो वो अल्लाह ताला उसका भी लिहाज कर रहे होते हैं। अगर दूसरी कौम को सजा देना पेश नज़र है, उनको झंझोड़ना पेश नज़र है, उनको नुकसान पहुंचा के बेदार करना पेश नज़र है, तो झूठे बहाने भी अल्लाह ताला चलने देते हैं। तो अल्लाह की जब मदद नहीं आएगी तो कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह की मदद जिसको हासिल हो जाए वो गालिब आ जाता है। तो अब ये बताया कि उहद में उतने देर के लिए जब मैंने तुम्हें साथ दिया, बयान किया अल्लाह ताला ने पीछे कि मैंने तो अपना वादा पूरा किया था, तुम जो कर रहे थे सो कर रहे थे, लेकिन तुमने खुद हौसला हार दिया, तो फिर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, फिर जो होना था वो होने दिया। उसकी हिकमतें बताएं कि मैंने क्यों होने दिया है, क्योंकि अल्लाह का रसूल मौजूद है बीच में, वो सहाबा भी मौजूद थे जो साबित कदम रहे, उनकी बल्कि लगता है कि अक्सरियत थी, ये थोड़े ही लोग थे जो भागे, लेकिन बहरहाल फिर भी जो सूरत हाल है उस वो अल्लाह के फैसले से हुई है। तो अब वो बताया, ऊपर जो बताया था कि जब आप फैसला कर लें तो अल्लाह पे भरोसा करें, ये उसकी हिकमत बताई जा रही है, उसका सबब बताया जा रहा है कि अल्लाह पे भरोसा करने का मतलब यही है कि अल्लाह ही गालिब करते हैं, अल्लाह ही शिकस्त देते हैं। तो अल्लाह ताला वो हालात पैदा कर देते हैं अगर आप सही फैसला करके, सही तरीके से मशवरा करके, मामलात करके, तकवे के साथ निकले हैं तो कोई मसला नहीं है। तकवे के बगैर निकलेंगे, साबित कदमी नहीं दिखाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला साथ नहीं देगा। बदर के वाकयात में ये भी अल्लाह ताला ने बयान किया कि आदमी निकला किस लिए है, उसको भी अल्लाह ताला लिहाज करते हैं कि वो अल्लाह के लिए निकला है या किसी शैतान के लिए निकला है, तो वो भी एक फैसला कुन जगह बन जाती है। लेकिन बहरहाल उसमें दूसरे भी कायदे चलते रहते हैं जिस जिनमें से दो तीन मैंने बयान किए, यानी गलबा तो हक वालों ही का होना चाहिए, लेकिन हक वाले गलती कर दें तब सज़ा आ सकती है, या हक वालों ने, सच्चे लोगों ने, मोमिनीन ने किसी ऐसी बात की वजह से जंग कर दी है जिसमें वो हक पर नहीं है, तब अल्लाह ताला काफरों का साथ दे सकते हैं क्योंकि वो हक पे हैं। यानी उस जंग के मामले में कि उनका इकदाम जायज़ था और मोमिनीन का इकदाम नाजायज़ था, तो अल्लाह ताला उधर साथ दे सकते हैं। इसी तरह किसी कौम के ऊपर अजाब, किसी चीज़ को बनाना है, उस मौके पर अल्लाह ताला उन लोगों को भी गलबात यानी ताकत दे देते हैं फतह करने की जो किसी गलत बहाने से उठे हों। मैं पिछले दो तीन महीनों से जब से फ़लस्तीन में वो ज़ालिमाना किस्म की कार्रवाइयाँ जारी हैं इसराइल की तरफ से, तो उनके ऊपर मतवज्जह करता रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला इस वक्त इसराइल का साथ क्यों दे रहा है, ये हमें देखना चाहिए। कहीं अल्लाह ताला हमारी किसी खता की सज़ा तो नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए ये अजाब बनाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका इकदाम ठीक है, हमारा इकदाम गलत है और हम गैर आदलाना काम कर रहे हों। तो ये सारे पहलू गौर करने हैं। मेरी अपनी राय यह है कि हमें, हमारे अपने इकदाम इस वक्त गलत हैं और हमने बग़ैर सोचे समझे कुछ इकदाम किए हैं और हम तकवे के उस मियार पर पूरे नहीं उतरे कि अल्लाह ताला हमारा साथ दे। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इसराइल को ज़ालिम नहीं समझता, वो ज़ालिमाना इकदाम कर रहा है, लेकिन बहरहाल सवाल यह है कि अल्लाह ने यह मोहलत क्यों दी है उसको, तो उसके पीछे हमारी तरफ से खराबी हो सकती है। और मैं ये बयान कर चुका हूँ कि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि मैंने दो दफ़ा इसराइल को, जब वो मोमिन थे, उनके ऊपर फ़लस्तीनियों को गालिब किया था और दूसरी कौमों को चढ़ा लाए थे अल्लाह ताला, तो वो एक कायदा है जिसको सामने रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ रवाज पा गई कि हम चूँकि उम्मत मुहम्मदी में हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए जो मर्ज़ी कर लें अल्लाह का हमें साथ मिलेगा नहीं। हम मोमिन होंगे, नेक होंगे, तकवे से काम लेंगे, साबित कदमी से काम लेंगे, सच्चाई के लिए उठेंगे, हक की खातिर उठेंगे, तब अल्लाह ताला हमारा साथ देंगे। इसी को अल्लाह ताला उहद के इस वाक्य की रोशनी में बयान कर रहे हैं कि अल्लाह का रसूल था, अकाबर साहबा थे, उम्मत के बेहतरीन नचोड़ कह लीजिए करीम वहाँ मौजूद थी, तो उनको भी एक छोटी सी गलती के उस टीले में से 35 लोग उतर आए तो इतना बड़ा धचका लगा। तो क्या हम इन लोगों की मिसाल हैं? तो हम तो हर रोज़ टीले से उतर जाते हैं जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने खड़ा किया हुआ है, तो इसलिए हमें अपने मोर्चों में गलत तरीके से बैठे हुए हैं, गलत हरकतें करते हैं और फिर भी तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारा साथ दे। और सच्ची बात है कि उम्मत की जो करतूत है उसके बावजूद उसने हमें कुछ आज़ादी दे रखी है कुछ, तो ये उसका बड़ा एहसान है, वरना हमें लोग नोच कर खा जाएं जिस तरह की कमज़ोरियां हमारे अंदर हैं। अपने ही मुल्क को, अपने ही मुल्कों को, अपने ही उम्मत को हम जिस तरह से बर्बाद करके रख रहे हैं, उसके बाद भी अल्लाह ताला बचा के रखे हो तो इसका बड़ा इनाम है। तो आगे फरमाया वमा काना लिनबी वमा यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल कयामा। नबी के लिए ये रवा नहीं है, यानी कोई नबी भी ऐसा नहीं होता कि वो यगुल करे। यगुल दो मानी में लिया गया है, एक ये कि नौज बिल्ला इन्होंने माले गनीमत का मसला हुआ, और दूसरा लिया गया कि उम्मत के मसयों के, समझिए कि जैसे हम किसी लीडर को कहें कि भाई तुमने अपनी राय अपनाई और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी बात सुन लेते तो ठीक था, काम ख़राब ना होता। तो अब ये जो बात है कि हमारी बात नहीं सुनी, आपने अपनी बात चलाई और अपनी बात चला के इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इसको भी इस लफ्ज़ से बयान। तो माले गनीमत में से कुछ चीज़ चुरा लेना या कौम के लिए बेवफाई करना, ये दो मतलब इसके लिए जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ इसकी तफसीर दो की गई है। एक तफसीर ये की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में कोई चादर गुम हो गई थी, तो उसके बारे में ये कहा गया था कि चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कंट्रोल था सारी चीज़ों का, तो आपने अपने पास रख ली होगी, यानी चुराने का मसला नहीं लेकिन अपने पास रख ली होगी। और दूसरी बात उहदी के बारे में कही जाती है कि वो जो टीले से उतर आए तो उनको पूछा गया, जबकि तुम लोग टीले से उतर आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए उतर आए कि पता नहीं हमें माले गनीमत मिले कि ना मिले। ठीक है, अब इसमें ये बात थी कि शायद दूसरे लोगों को दे दी जाए, तो ये तो एक तफसीर के ये दो वाक़यात हैं जो जोड़े गए हैं कि ये माले गनीमत में अंदेशा या इल्ज़ाम था कि ऐसा ना हो जाए। दूसरी तफसीर ये की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय के मुताबिक जब जंग में दाखिल हो गए तो उससे उम्मत, उस वक्त की उम्मत को नुकसान पहुंचा, तो लोगों ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हौसले आजमाए हैं और हमारे लिए मसला पैदा कर दिया, इस मानी में लिया गया। तो फरमाया कि नबी के लिए ये दोनों पहलुओं से अगर ले लें तो नबी के शायान शान नहीं है कि वो माले गनीमत को सही तकसीम ना करे या उसमें से अपने लिए कोई चादर रख ले, या ये भी नबी के लिए रवा नहीं है कि वह अपनी उम्मत की सही बात को छोड़ के गलत बात को इख्तियार करे और उम्मत का नुकसान कर दे, ये नबी नहीं कर सकता। दूसरे मानी मेरे तरजीह के हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चादर वाला वाक्य है वो तो बदर का है, उसका उहद से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर टीले वालों ने ऐसा कहा है तो ये मुमकिन नहीं है कि माले गनीमत पिछली जंग बदर में जिस तरह से तकसीम हुआ था वैसे अब होगा। तो ये दोनों बातें जो हैं वो लगता है कि बस तारीखी तौर पर कहीं से आ गई हैं। असल बात यही है कि लोगों ने यह ख्याल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बात, जो लोग बातें कर रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बात नहीं मानी, अपनी बात चलाई है तो नुकसान हो गया, तो इस तरह से बदखाही हो गई है, कोई मामला गड़बड़ हो गया। यगुल्ला में एक पहलू और भी है कि दुश्मनी निकालना, दुश्मनी निकालना, यानी आपने मेरे से मशवरा करने आए तो मैं चूंकि आपका खैरखा नहीं था तो मैंने जो आपने गलत बात कही उसी को हाँ कर दिया कि ठीक है, या गलत मशवरा दे दिया ताकि जो मेरा नुकसान किया था उसने उसकी सजा मिले इसको। तो ये भी एक बात हो सकती है इसके अंदर कि नबी सब ने अपनी दुश्मनी निकाली मुनाफिकीन से। तो ये भी बात नबी दो तीनों बातों को आप ले लीजिए कि नबी अकरीम सल्लम के शायान शान नहीं है, अम्बिया ऐसे नहीं होते कि वो अपना कीना निकालें या उम्मत के साथ बेवफाई करें या माले गनीमत में से कुछ चुराएं। तीनों की नफी जो भी हकीकी वाक्या हो जाएगी। फिर आगे फरमाया कि वमा या गुलुल, जो ये तीनों काम करेगा याति बिमा गल्ला यौमल क्यामा, तो वो अपने उस बदनवानी के साथ क्यामत वाले दिन हाजिर होगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, तो फिर हर एक को जो उसने कमाई की होगी उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और इनके ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। तो अब ये जो भी इल्ज़ाम लगा था तीनों में से, जो भी इल्ज़ाम लगा था उसको अल्लाह ताला ने कबीरा गुनाह के तौर पर ट्रीट किया है कि अगर माल गनीमत का मसला था, अगर उम्मत के साथ बेवफाई का मसला था, या मुनाफिकीन के लिए या बाज लोगों के लिए दुश्मन निकालने का मसला था, तीनों सूरतों में लोग अपने अपने इस काम को भुगतेंगे। जो भी क्यामत वाले दिन ये करके आएगा वो भुगतेगा। तो ये बात इस बात के, यानी इस ये बात जुमला इसलिए बोला गया कि एक तो ये कि तुम तसल्ली रखो, अगर जो कोई इस तरह का हरकत करेगा उसको सजा पूरी मिलेगी। लेकिन इसके अंदर दूसरी बात इसलिए ये कही गई है कि ये हरगिज नबी के शान शान नहीं है, क्योंकि अंबिया इस तरह के गुनाह नहीं किया करते। ये अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे इकदाम को ओन किया है कि उहद में निकलना बिल्कुल सही था, जहाँ जहाँ आपने फौजें खड़ी की वो भी बिल्कुल ठीक था, जो इकदाम किए वो भी ठीक थे, और अल्लाह ने भी अपने वादा पूरा किया था वो भी ठीक था। तुम लोगों की तरफ से गलती हुई जिसकी सजा मिली है। इसलिए नबी करीम सल्लम को ये कहना कि उन्होंने उम्मत का सही तरह से साथ नहीं दिया, अपने हौसले आजमाने के लिए उम्मत को नुकसान पहुंचाया, साहबा को नुकसान पहुंचाया, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लम ऐसी हस्ती नहीं है। तो जाहिर है कि ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं। नबी करीम सल्लम की पूरी ज़िंदगी में कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है। सादिक और अमीन आपको कुफार भी कहते थे, दुश्मन भी कहते थे, अपने भी कहते थे, ये कोई सवाल ही नहीं था। इस तरह का आपकी तारीखी तौर पर जो पूरी ज़िंदगी है वो भी इस बात पर गवाह है। एक सवाल बस वो भी तारीख में है, पता नहीं उसकी क्या हकीकत है, लेकिन वो ये उठा था कि फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत कुरान मजीद के उस हुक्म के मुताबिक जिसको मुअल्लफतुल कुलूब कहा जाता है उसके तहत नए मफतू होने वाले लोगों को दिया था, तो मदीना वालों को कुछ नहीं मिला था, अंसार को। उस पर सवाल पैदा हुआ था कि हमें क्यों नहीं दिया गया। तो उस पर फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुफ्तगू की और फरमाया कि माल मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूं और अंसार के साथ मैं खुद जा रहा हूं। तो गोया जो खैर का वसीला है वो साथ जा रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा। तो इस तरह से ये सिवाय से एक बात के और कोई भी आप ज़ाती तौर पर तो खैर कोई मसला ही नहीं है। इसमें तो ज़ात को नहीं दिया आपने, उन कबाइल को दिया जो नए नए फतह हुए थे ताकि वो अपने जंगी, देखिए जो भी कौमें मफतू होती हैं अगर उनका दिल ना जीता जाए तो वो फितने पैदा करती रहती हैं। तो इस बात को पुराने ज़माने से यही तरीका चला रहा है, बाज़ुकात शादियां कर लेते थे एक दूसरे के साथ, बाज़ुकात इस तरह माली तावुन करके तोहफे तहाइफ देकर उनको गुस्सा उनका ज़ाहिल कर दिया जाता था। इसको मुअल्लफतुल कुलूब यानी दिलों को जीतने का नाम दिया गया। तो ये ज़ाहिर है कि एक बड़ा इल्ज़ाम था जिसकी सफाई ज़रूरी थी, तो नबी अकरम सल्लम के तोहमत जो लगाई गई थी उसको ज़ाहिल कर दिया गया। आगे फरमाया, अफमान तबा रिजवान अल्ला ही कमन बा अब सखत मिन अल्ला वमा वाहू जहन्नम व बेसल मसीर। तो फरमाया कि वो जो अल्लाह की रिजवान के पीछे लगा, क्या वो उस तरह से हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा जो अल्लाह की नाराज़ी लेकर लौटा, और उसका ठिकाना दोजख हो, व बेसल मसीर, और वो नहायत ही बुरा ठिकाना। अब ये सारी बात के साथ जुड़ा हुआ है, तीन चीज़ें हैं। एक ये कि कुछ लोग शहीद हो गए हैं और इन लोगों को दुख है। दूसरी बात यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह तोहमत लग गई है। तीसरी बात यह कि जो ये शहदा हैं इनको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, यानी इनको दर्जात की बयान किया कि रिजवानुल्लाह मिलेगी और वो रहमत अल्लाह ताला की मिलेगी। ये सारी बातें इकट्ठी जहन में रख कर अब सोचिए कि फरमाया गया कि वो जिसने अल्लाह की रज़ा के पीछे लगा, जो अल्लाह की रज़ा चाहने की जद्दोजहद करता रहा, अब इसमें कौन कौन लोग हैं। एक वो लोग हैं जो उहद में पहुंचे अल्लाह की रज़ा के लिए, शहीद हो गए। एक वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए उहद में पहुंचे लेकिन जिंदा वापस आए, कुछ चोटें लगी। एक वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं आए थे, तो फितना डालने आए थे, वो लोग इसमें मौजूद हैं। और तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपना जायज़ा यूं ना लो कि मसला क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है, शहीद कितने हुए हैं। ये देखो कि कौन अल्लाह की रिजवान के लिए आया था, कौन अल्लाह की रिजवान के लिए आया था। जो अल्लाह की रिजवान के लिए आया वो खा जिंदा वापस आ गया है या शहीद हो गया, वो फ़ायदे में है, ठीक है। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रिजवान के लिए निकले थे, सारी ज़िंदगी उनके लिए अल्लाह की रिजवान के लिए गुजर रही है, तो तुम उन पर तोहमत लगा कर करना क्या चाहते हो? अल्लाह की रिजवान तलाश कर रहे हो कि कुछ अल्लाह की नाराज़ी वापस लेना चाहते हो? तो फरमाया कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाने से पहले हज़ार दफ़ा सोचो कि मैं क्या सही बात है हमारे पास, या बस हम जज्बात में आकर बातें कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को सामने रख कर फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की रिजवान चाह रहे हैं, क्या वो उनके बराबर हो जाएंगे जो अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं और दोजख को अपना ठिकाना बना रहे हैं? तो ये फरमाया के बराबर नहीं हो सकते। तो तुम्हें उहद में जाते हुए, उहद से वापस आते हुए, उहद के नताइज को कबूल करते हुए अपने बारे में ये सोचना है कि हम कौन सी कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं। आगे फरमाया कि हम दराजातुन इंदल्लाह, ये बराबर नहीं है, दोनों के अलग अलग दर्जा हैं। दर्जे में बाज़ुकात एक ही कैटेगरी में दर्जा भी होता है और बाज़ुकात दो, तो दोजख़ी होना और जन्नती होना इसका दर्जा भी दर्जाती है। ये दोजख़ के दर्जे वाला है, ये जन्नत के दर्जे वाला है। तो फरमाया हम दराजातुन इंदल्लाह, ये सारे के सारे मुख्तलिफ दर्जे वाले हैं अल्लाह के नज़दीक। यानी अल्लाह के नज़दीक जो दोजख़ कमा के लाए हैं वो दोजख़ में जाएंगे, जो जन्नत कमा के लाए हैं वो जन्नत कमाएंगे, ख़ा वो शहीद हो गए हैं या जिंदा वापस आए हैं। और तुम अपने बारे में सोचो कि कहीं रसूल के ऊपर ये तोहमत लगाकर क्या तुम अल्लाह की नाराज़ी तो नहीं मोल ले रहे हो? तो फरमाया कि जो अल्लाह की नाराज़ी मोल ले रहे हैं वो मुख्तलिफ दर्जे के लोग हैं उनके मुकाबले में, जो अल्लाह की रिजवान की तलाश में हैं। और फरमाया कि ये दर्जात मैं इस वजह से नहीं दूंगा कि कोई मुझे पसंद है या नापसंद है, नहीं, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह ताला इनके अमाल को देख रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कि अब उहद का जो ये वाक़या था, बड़ा वाक़या था, हादसा भी बहुत हो गया था, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी आयात मुसलसल इसी मौजू पर नाजल हो रही हैं और ये बताया जा रहा है कि असल रवैया क्या है। अगर आप इन आयतों को पढ़ें और जो निकात हमने इसके अंदर से समझे हैं वो अपनी ज़िंदगी के लिए एक हदायत बना लें, तो हम ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में बहुत मुख्तलिफ जगह पे खड़े हो जाएंगे। ये हमें एक ख़ास तरह का जाविया निगाह देते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कुछ आयात हैं जो नाजिल हो रही हैं, नहीं, ज़िंदगी को देखने का, خدا کے عمل کرنے کے طریقے کیا ہیں، خدا کس طرح سے شکست اور فتح کرتا ہے، کن مقاصد کے لیے کرتا ہے، کیا کیا چیزیں توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں، اس کے اندر پھر کیا لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ آپ کے لیے اس میں وہ قاعدے ضابطے ہیں جو میں نے کچھ بیان کیے ہیں اپنے اردو زبان میں، لیکن بہرحال قرآن میں تو عربی زبان میں موجود ہی ہیں. تو اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ اگر آپ تہمت لگانے اٹھے ہیں یا احد میں گئے ہیں یا کچھ آپ نے کیا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہے، کیا آپ اللہ کی رضوان کی تلاش میں ہیں یا کچھ اور چکر ہے آپ کے ذہن، تو اس کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ سارے لوگ برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درجات ہیں اللہ کے نزدیک، ایک دوزخ کے درجے میں جائیں گے، ایک جنت کے درجے میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. بصیر میں صرف دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ بصیرت والا دیکھنا ہوتا ہے. اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ ایک موقع پر مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں آ کر میں نے غلط حرکت کر دی کوئی، تو اب اللہ تعالیٰ جب اس میرے عمل کو دیکھیں گے تو وہ بصارت کے ساتھ نہیں بصیرت کے ساتھ دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کا مزاج کیسا ہے، اس کو کتنا تنگ ہو گیا ہوا تھا، کیسے حالات تھے، کوئی اور تو پہلو نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کو غصہ زیادہ آ گیا ہوا تھا. وہ سارے پہلو سامنے رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے یا کیا معاف ہو جانا چاہیے. یہ بصیرم بما یعملون ہے کہ میری شخصیت، میرے حالات، میرا اس وقت کی کیفیت، اس وقت کی میری کمزوری، اس وقت جو بھی میرے ساتھ ہوا، وہ سارا کچھ سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کریں گے کہ اس کو ایک پوائنٹ ملنا ہے کہ دو پوائنٹ ملنا ہے کہ تین پوائنٹ ملنا ہے. تب جیسے اب یہ واضح ہوا کہ احد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنہ کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا جرم الگ ہے. جو بھگدڑ میں بھاگے ہیں ان کی خطا ہے صرف کہ وہ ایک حملہ ہوا، بھگدڑ مچی تو جو سمجھ میں آیا کر دیا. اس وقت نہ تقوی مسئلہ تھا نہ اس وقت ایک ریفلیکس ایکشن تھا، ہو گیا سو ہو گیا. تو ان لوگوں کو کیا سزا دی جائے؟ نہیں، بس وہ اس ریلے میں ایک طرح سے وہ بھی سما گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ سارا کچھ اللہ نے سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بھی ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں. البتہ ان لوگوں کو خود سوچنا ہے کہ یہ کس ذہن کے ساتھ گئے تھے، اللہ کی رضوان کے لیے گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اور اگر اللہ کی رضوان کے لیے گئے تھے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر یہ کسی اور مقصد سے گئے تھے تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو ناراض کرنے کا نتیجہ دوزخ ہے جو نہایت برا ٹھکانہ ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ واضح اصول ہے. یہ جو برے اور اچھے کا درجات کا الگ الگ ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جو قیامت کے برپا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ سارے لوگ نجات پا جائیں گے؟ کیا مجرم اور مومن برابر کر دیے جائیں گے؟ کیا عامہ اور بصیر برابر کر دیے جائیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو اسی اصول کو یہاں پر بھی برتا گیا ہے کہ احد میں جانے والے کس ذہن کے ساتھ گئے تھے، واپس آنے والے کس ذہن کے ساتھ واپس آئیں. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے تو تھوڑی بہت غلطی، خطا، بھاگ جانا، ٹیلے سے اتر آنا، یہ قابل معافی ہے. اور اگر گئے تھے اللہ کی رضوان کے لیے نہیں، مال غنیمت لینے گئے تھے، دنیا کمانے گئے تھے، تو پھر کام خراب ہے. تو اب یہ ایک نمونہ، ایک آئینہ سامنے رکھ دیا. ظاہر ہے کہ صحابہ کی اکثریت اللہ کی رضوان کے لیے گئی تھی، جیسا کہ میں نے اشارات سے واضح کیا، لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہ پیچھے جو بات چلی آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلے ایسے کیے، احد میں اترے تو ہمیں نقصان ہوا، اور نقصان ہوا تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو احسان کیا تم لوگوں پر، تم کہہ رہے ہو مروا دیا. تو لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تو احسان کیا ہے مومنین پر. जब उसने अपने एक रसूल को इन्हीं में से इनके अंदर मबूस किया है, जो इनको अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाता है, इनका तज़किया करता है, इनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो ये तो एहसान का काम था, तुमने उसको किस मानी में ले लिया। तो अब ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम इस बात पे अफसोस कर रहे हो कि हमारे 70 लोग शहीद हो गए। अल्लाह क्या कर रहे थे कि अपने रसूल के जरिए से तुम्हें जन्नती बना रहे थे, और तुम इस चक्कर में पड़ गए कि हमारे 70 साहबा शहीद हो गए, साथी शहीद हो गए, हमारे पास होते तो ना मारे जाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात मान लेते तो ये होता, ये बहाना जाते, ओहद के मैदान में ना जाते तो मारे ना जाते, ये सारी बातें पीछे हम पड़ चुके हैं। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, मैंने असल असूल ये है जो पिछली आयत में है कि अल्लाह की रिजवान की तलाश में निकलोगे तो कामयाब, नहीं तो मारे जाओगे। तो मैंने इस काम को करने के लिए कि तुम अल्लाह की रजा के तालब बनो, अल्लाह की रजा के तुम्हें रास्ता मिले, मैंने अपना रसूल तुम्हारे अंदर भेजा ताकि तुम हदायत याफ्ता हो जाओ और उस बड़ी हलाकत से बच जाओ। ये छोटी हलाकत तो कोई चीज़ नहीं है, तो सबने जाना है दुनिया से, मौत तो इस दुनिया में अटल है, खा मैदान उहद में हो जाए या किसी घर में बिस्तर पर हो जाए, सबने जाना है। तो या तो ये ना कि मौत आती नहीं है, उहद में जाने से आ गई है तो तुम पछताओ। तो असल मसला तो ये था कि वो बड़ी हलाकत से बच गए, जो शहीद हो गए अल्लाह ने बयान किया कि मैंने उनको मगफरत और रहमत किया उनके ऊपर, तो वो रसूल के आने की वजह से हुआ है। तो अल्लाह ने तो मोमिनीन पर एहसान किया था कि उनके बीच में अपने रसूल को भेजा और रसूल उन्हीं में से भेजा। ये बड़ी अहम बात है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे अंदर अरबी रसूल आ जाए, अरबी बोलने वाला, तो ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, कि हमारे रसूल की ज़ुबान तुर्की है और तुर्की हमें आती नहीं, तो समझेंगे क्या, मानेंगे क्या, इनकार क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, समझ नहीं आ रही। फिर सिर्फ ये नहीं है कि ज़ुबान उनकी है, उन्हीं की तहजीब का आदमी, उन्हीं की तरह खाता, उन्हीं की तरह पहनता, उन्हीं की तरह रहता, उन्हीं की तरह सारी तहजीबी जितनी भी चीज़ें हैं वो मुश्तरक है, तो हर पहलू से काबिले कबूल, मारूफ, जाना हुआ, हर हर इशारा उसका समझा जा सकता है। तो फरमाया कि मैंने इन पर एहसान किया, इन्हीं में से एक रसूल भेजकर, इन्हीं में से, यतलु अलैहिम आयातिही, ये रसूलों का असल काम होता है कि जो आयतें अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं वो उनको सुना देता है, पहुंचा देता है उन तक, तो उनके ऊपर अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाता है, वह युज़क्कीहिम, और उनको सुधारता है। ये मुकम्मल काम है, यानी रसूल का बतौर दाई ये ही मुकम्मल काम है कि वो अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाए, लोग उन आयतों को मानकर अपने आप को सुधरने के लिए तैयार हो जाए, ईमान ले आए गोया। तो युज़क्की का तर्जमा यहाँ बस ये इतना ही है कि आयतें पढ़कर सुनाता है ताकि वो हदायत को मान ले, जो हदायत को मान लेगा वो तज़किया हो गया उसका, ठीक है। अब तज़किया यहाँ कुरान मजीद में आयत तीन जगहों पे आई है, एक जगह पीछे हम सूरह अल बकरा पढ़ चुके हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में, उसमें तज़किया सबसे एंड पे है, और एक यहाँ आई है और एक सूरह जुम्मा में आई है, वहाँ तज़किया शुरू में है, यानी बाकी जहाँ पे अल्लाह ताला के तौर के जुमले के तौर पे आया है तो वहाँ तलावत आयात के बाद तज़किया है, और जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है वहाँ सबसे एंड पे है, युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा के बाद वह युज़क्कीहिम है। तो अल्लाह ताला की अपनी तरतीब ये है, अल्लाह ताला की अपनी तरतीब यह है कि आयतों की तलावत से तज़किया होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कुरान मजीद नाजिल होगा, हमने कुरान की दावत सुनी, मान लिया, तज़किया हो गया, ठीक है। तज़किया का वो जो सारा बाकी एक हमने तसव्वुर बना रखा है वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह की हदायत को मान लें, उसको अपना अमल में ले आए, यही तज़किया, ठीक है। अब जब तज़किया हो जाएगा, आदमी कहेगा जी मैं ईमान ले आया, आप मुझे बताइए, इन्ना समय ना मुनादी है युनादी लिल ईमान, तो हमने जब मान लिया तो अब हम करें क्या, उसको आगे फरमाया वही जो अल्लाह मुहम्मद किताब वल हिकमा, कि फिर जो नबी हैं वो اپنی امت کو کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد شریعت ہے اور حکمت سے مراد ایمانیات اور اخلاق ہے. یہ تینوں جو پہلو ہیں ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے, ٹائم پہلے ہی اوپر ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.